आमुख ज्ञान की कोरी वचनावली और योग की थोथी साधनावली का यदि साधारण लोगों में विशेष प्रचार हो तो अर्थ अव्यवस्था फैलने लगती है। निर्गुण पंथ ईश्वर की सर्वव्यापकता, भेदभाव के शून्यता, सब मतों की एकता आदि लेकर बढ़ा। इस पर चलकर अपढ़ जनता ज्ञान की अनगढ़ बातों और योग के टेढ़े मेढ़े अभ्यासों को ही सब कुछ मान बैठी तथा दंभ अहंकार आदि दुर्वृत्तियों से उलझने लगी। ज्ञान का ककहरा भी जानने वाले उसके पारंगत पंडितों से मुहजोरी करने लगे। अज्ञान से जिनकी आंखें बंद थी वे ज्ञान चक्षुओं को आंख दिखाने लगे। बांत ही शूद्र द्विजन सन हम तुम ते कहूँ घाटी, जानय ब्रह्म सो विप्रबर आंख दिखावट ही दाटी। मानस जैसे तुलसी की मानस में यह लोक विरोधी धारा खटकी, वैसे ही सूर की आंखों में तुलसी ने स्पष्ट शब्दों में और कड़ाई से इसका परिहार करने की ठानी। प्रबंध का क्षेत्र चुनने से उन्हें इसके लिए विस्तृत भूमि मिल गई, पर गीतों में सूर ने इसका प्रतिवाद प्रत्यक्ष नहीं प्रच्छन्न रूप में किया। उन्होंने उद्धव प्रसंग में भ्रमर गीत के भीतर इसके लिए स्थान निकाला। उद्धव के योग एवं ज्ञान का जो प्रतिकार गोपियों ने सुर सागर में किया वह सूर की योजना है। श्रीमद्भागवत में इसकी स्थूल कथा के आधार पर सुर सागर रचा गया यह विधान है ही नहीं। उद्धव के ब्रज जाने, उपदेश देने, भ्रमर के आने और उसे खरी खोटी सुनाने का वृत्त तो वहाँ पर है, पर गोपियों द्वारा ज्ञान या योग का विरोध नहीं। ब्रज में उद्धव का केवल स्वागत सत्कार ही हुआ, फटकार की मार उन पर नहीं पड़ी। अतः यह तत्कालीन उद्वेगजनक प्रवृत्ति ही थी जिसका उच्छेद करने के लिए सूर ने सागर की ये उत्ताल तरंगे लहराई। ज्ञान या योग की साधना भली न हो तो सही है जो नहीं, वस्तुतः वह कठिन है, सामान्य विद्या बुद्धि वालों की पहुंच से परे है। पक्ष में उद्धव जैसे ज्ञान वरिष्ठ पुरुष और विपक्ष में ब्रजवासिनी ऐसी ज्ञान कनिष्ठ स्त्रियों को खड़ा करके सूर ने ज्ञान एवं योग का प्रतिरोध साधारण जनता के दृष्टि से किया। ज्ञान की ऊंची तत्वचिंता उनके लिए नहीं, ज्ञान योग के प्रतिपक्ष में प्रेम योग का मंडन करके यह प्रतिपन्न किया गया है कि भक्ति की भी वही चरमावधि है जो ज्ञान की। अहो अजान ज्ञान उपदेशत ज्ञान रूप हमहि, निषिद्ध निध्यान सूर प्रभु को वली देखत जित तितहि। सूर ने ज्ञान या योग मार्ग को संकीर्ण कठिन और नीरस तथा भक्ति मार्ग को विशाल सरल और सरस कहा है। ज्ञान तथा योग का अभ्यासी विश्व की विभूति से अपनी वृत्ति समेट कर अंतर्मुख हो जाता है, इसलिए गुह्य रहस्य एवं उलझन की वृद्धि होती है, पर भक्ति का अनुरागी बहिर्मुख रहता है। वह जगत के विभूतिमत श्रीमत और उर्ज्वसित रूपों में अपनी वृत्ति रमाए रहता है, इसलिए दुराव छिपाव से दूर रहता है, उसके लिए सब कुछ सुलझा हुआ है। इस प्रकार भक्ति का राजमार्ग चौड़ा निष्कंटक और सीधा है, उसमें गोपन रहस्य या उलझाव कहीं नहीं। काहे को रोकत मार्ग सुधो, सुनहु मधुप निर्गुण कंटक ते राजपंथ क्यों रुधो। राजपंथ ते टारी बतावत उरभ कुबील कुपैड़ो, सूरदास समाय कहाँ लो अज के बदन कुम्हेड़ो। विश्व की विभूति में मन को रमाने का जैसा अवसर भक्ति भावना में है वैसा अंतर साधना में नहीं। कल्याण का मार्ग अंतर्व्यापी नहीं बहिर्व्यापी सत्ता से फूटता है। दूरी नहीं दयाल सब घट कहत एक समान, निकस क्यों न गोपाल बोधत दुखिन के दुख जान। उरते निकस करत क्यों न शीतल जौ पै कान यहाँ है। सगुणोपासना साधारण होती है मन को रमाती है, निर्गुणोपासना निराधार होती है मन को चक्कर में डालती है। रूप रेख गुण जात जुगत बिनो निरालंब मन चक्रित धावय, सब विधि अगम विचार ही ताते सूर सगुण लीला पद गावय। इसी से योग साधना का निर्गुण उपासना नीरस कही गई है। अयलि कहा जोग में नीको, तज रस रीत नंद नंदन की सिखवत निर्गुण फीको। सूर कहो गुरु कौन करे अलि, कौन सुनय मत फीको। सगुण निर्गुण के विवाद से उद्धव प्रसंग इतना खिला, और भी कई समर्थ कवि उस पर रीझे। नंददास ने भी भाव भरा भवन गीत गाया। उसकी टेक मिश्रित गीत शैली भ्रमर गीत की विशिष्ट पद्धति ही मान ली गई है। इनका भ्रमर गीत शुद्ध मुक्तक न होकर पद्य निबंध के ढंग पर चला, इसलिए उसमें गोपी उद्धव संवाद सदा हुआ आया है। उत्तर प्रत्युत्तर भी तर्कबद्ध रीति पर है। सूर के भ्रमर गीत की सी विविधता उसमें नहीं, पर निबंध रूप में होने से रसधारा का आनंद प्रवाह अवश्य मिलता है। सूर के उद्धव की भांति नंददास के उद्धव मौनाभ्यासी तथा अल्पभाषी नहीं है, भारी शास्त्रार्थी या विवादी है। श्री कृष्ण के वियोग वृत्त पर दो विशिष्ट रचनाएं आधुनिक काल में भी प्रस्तुत हुई, एक रत्नाकर का उद्धव शतक और दूसरी सत्यनारायण कविरत्न का भ्रमर दूत। सूर के भ्रमर गीत में जो थोड़ी कमी थी वह उद्धव शतक में परिपूर्ण हो गई। कवित्व शैली में कुछ नवीन उद्भावनाओं के साथ उद्धव शतक प्रस्तुत करके रत्नाकर ने अपनी कवित्व शक्ति का सच्चा परिचय तो दिया ही, लाक्षणिक प्रयोगों और व्यंजक विधि की कसावट से भाषा शक्ति का भी पूरा प्रमाण उपस्थित किया। इसमें भ्रमर का वृत्त नहीं आया है। भ्रमर दूत में देश प्रेम की भी व्यंजना करके कविरत्न जी ने उसे सामयिक रंग में बड़ी ही विदग्धता के साथ रंगा है। यशोदा या भारत माता भ्रमर को दूत बनाकर श्री कृष्ण के पास द्वारका भेजती हैं। इसकी रीति नंददास वाली टेक मिश्रित है। इस प्रकार उद्धव एवं भ्रमर के वृत्तांत पर हिंदी में एक पृथक ही वांगमय खड़ा हो गया है, जो बहुत ही रसीला और मर्मस्पर्शी है। प्रस्तुत भ्रमर गीत सुर सागर के सर्वोत्कृष्ट रत्न राजी है। स्वर्गीय आचार्य शुक्ल जी ने सुर सागर को मत कर भ्रमर गीत सार 400 पदों में संचित किया था। संग्रह थोड़ा थोड़ा करके कई बार में किया गया था, और जैसे जैसे संग्रह होता जाता था पुस्तक छपती जाती थी। इसी में इसमें कुछ पद पुनरुक्त हो गए और कुछ अस्थानस्थ, यहाँ तक कि एक पद संयोग श्रृंगार का भी चिपका रह गया। पुस्तक का अधिक प्रचार हुआ और शुक्ल जी के जीवन काल में ही इसकी कई आवृत्तियां हो गई। न तो प्रकाशक को पुनरावृत्ति रोक रखने का अवकाश मिला और न संपादक को उसकी पुनरावृत्ति करने का। फलस्वरूप पुस्तक प्रायः ज्यों की त्यों छपती रही। केवल थोड़ी सी छापे की भी अव्यवस्थाएँ दूर कर दी गई, जो पहली आवृत्ति होते ही ज्ञात हो गई थी। अतः शुक्ल जी जैसा चाहते थे वैसा परिष्कार करने की बारी ही नहीं आई। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में यह ग्रंथ पढ़ाते समय मुझे शुक्ल जी की से कई स्थानों पर विचार विमर्श करने का भी सुअवसर प्राप्त हो चुका है। प्रस्तुत आवृत्ति के समय जब प्रकाशक ने मुझसे उसके उपसंपादन का अनुरोध किया, तो मैंने शुक्ल जी की नीति के अनुकूल इसमें कुछ उलटफेर करने का दुस्साहस भी किया। फेरफार करने में जो विशेषता आ गई हो उसे स्वर्गीय शुक्ल जी का प्रसाद, और जो त्रुटि बन पड़ी हो उसे मेरा ही प्रसाद प्रमाद समझना चाहिए। छानबीन करने से निम्नलिखित पद संयोग श्रृंगार का दिखाई पड़ा, अतः उसे हटा देना पड़ा। देखु रे हरिजो के नयनन की छवि, यह अनुमान माने मन माने अम्बुज सेवत रवि। खंजरीट अतिव्यथा चपल भय, वन मृग जल महमीन रहे दबी। एते पय मानस न कछु न कछु कहत है कु कवि। इन से तो ऐ हरि आवय न कछु फवि, सूरदास उपमा जुगई सब जो हो मत हवि। उद्धव गोपी संवाद के एक ही लंबे पद के 6 टुकड़े हो गए थे, और उनमें पृथक पृथक संख्याएं लग गई थी। ये संख्याएं भी हटा दी गई। 5 पद 2 बार छप गए थे, ये पुनरुक्त पद भी कम कर दिए गए। ग्रंथ में पहले कुल पद संख्या 403 थी, उक्त परिशुद्धि से 11 पद संख्याएं कम हो गई, और अब कुल पद संख्या 392 ही रह गई। 8-9 पद नए जोड़कर 400 या 401 पद संख्या करने का विचार था, पर कई कारणों से ऐसा नहीं किया। भ्रमर गीत के कुछ पदों का आवश्यक अंग शुक्ल जी ने अपनी भूमिका में भी उद्धृत किया है। मिलाने पर भूमिका और मूल के पदों में कहीं थोड़ा और कहीं विशेष पाठ भेद दिखाई पड़ा। अधिकतर भूमिका के पाठ को ठीक मानकर जहाँ तक बन सका दोनों की एक रूपता स्थापित की गई। भ्रमर गीत में जो छापे की अशुद्धियाँ रह गई थी उन्हें भी शुद्ध कर दिया गया। ब्रज में तालव्य श नहीं होता, इसलिए सर्वत्र दंत्य स का ही व्यवहार किया गया है। पहले इस नियम का पालन कहीं था कहीं नहीं। पदों की दो चार टिप्पणियों में मतभेद दिखाई पड़ा। इनमें कोई परिवर्तन न करके संपादक की मूल टिप्पणियों के नीचे दूसरे अक्षर में नई टिप्पणियां अलग से लगा दी गई। शुक्ल जी की टिप्पणियों के अतिरिक्त बहुत से ऐसे शब्द और प्रयोग भी दिखाई पड़े जिनकी व्याख्या आवश्यक प्रतीत हुई, इसलिए चूर्णिका नाम से पुस्तक के अंत में कुछ और टिप्पणियां भी जोड़ी देनी पड़ी। अब आशा की जाती है कि यह पढ़ने पढ़ाने वालों के लिए सुगम हो गया होगा। ब्रह्मनाल काशी रथ यात्रा 1999। 2. ज्ञान की कथनी वाले संतों की वाणी में न साहित्य है कि प्राण है न शरीर। यदि कोई कहे कि साहित्य ने सही जीवन को तो इन संतों ने प्रभावित किया, तो इसका सीधा उत्तर यह है कि पूरे जीवन को नहीं, जीवन के अंश या अंग मात्र को ही निर्गुण की खजड़ी मुग्ध कर सकी। निर्गुण धारा निवृत्त मुखी थी, पर भारतीय साहित्य निवृत्ति मुखी कभी नहीं रहा, शांत को रस मानकर भी नहीं। भक्ति प्रवृत्ति मार्गी है, प्रवृत्ति लक्षण है, यह बहुत पहले आरंभ में ही घोषित कर दिया गया था। जो भक्ति को इतने पर भी निवृत्ति मार्गी समझते हों, उन्हें शास्त्र चिंतन का अभ्यास करना चाहिए। कबीर की अपनी डफली जीवनानांश को ही चकित कर सकी, साहित्य उससे न प्रभावित हुआ न शासित। कबीर की साधनात्मक रहस्योन्मुखी वृत्ति साधकों को ही काम की निकली, साहित्य अछूता ही रह गया। जीवन का जो अंश गोय गोप से दीप्त हो रहा था, भगवान के लीला से उसका रहस्योद्घाटन कर दिया। ज्ञान का गर्व विचूर्ण हो गया, भक्ति ने माया का पर्दा हटा दिया। यदि यह कहा जाए कि क्या प्रेम की पीर वाले फकीरों का भी प्रभाव नहीं पड़ा, तो उत्तर होगा कि भारतीय जीवन को उसने प्रभावित नहीं किया, साहित्य के अंग या अंश मात्र को ही वह प्रभावित कर सका, शासित उतने को भी नहीं। प्रेम की रहस्यवादनी प्रवृत्ति लेकर केवल सूफी फकीरों के ही बीच जागती रही भारतीय प्रेमाख्यानों की और रहस्योन्मुखी धारा पृथक प्रवाहित होती रही। हिंदी साहित्य के इतिहास में उसकी कोई कथा कहानी चर्चा वार्ता हुई ही नहीं, होती भी कैसे। भारतीय प्रेम काव्यों की सरस्वती का प्रवाह वेस्टर्नों में छिपा जो पड़ा है। साहित्य का जो अंश सूफियों से प्रभावित हुआ, उसकी खोज खबर साहित्य के इतिहासों के नहीं, रीति ग्रंथों के पहाड़ में जब साहित्यांश व स्वच्छंद स्रोत दबा जो पड़ा है। अब सगुण धारा के राम भक्ति और कृष्ण भक्ति के स्रोतों को लीजिए। राम भक्ति स्रोत के प्रवाहक महात्मा तुलसीदास उपदेश नीति मर्यादा आदि से सम्मिलित वाणी का विसर्ग करते रहे। वे पूरे सामाजिक थे, समाज को उन्हें सर्वतोधिक चिंता थी। समाज या जीवन को उन्होंने जैसा प्रभावित किया वैसा कोई न कर सका। तुलसी के राम रोम रोम में रम गए, पर क्या साहित्य में तुलसी की परंपरा चली। राम का चरित स्वयं काव्य भले ही हो, पर रामचरित मानस की परंपरा कहाँ है। जीवन ने उपदेशामृत का पान किया, पर साहित्य उंगने लगा। वह श्रद्धा का नए श्रृंगार का आलंबन चाहता था, वह मानस से चलकर सागर में जा डूबा। भक्ति काल के उपरांत रीति काल या श्रृंगार काल का आगमन हुआ। सूर्य के राधा कृष्ण घनश्याम काव्य के अक्षर अक्षर में छा गए। जिन्हें शंका या अपडर होता वे बोल उठते, आगे के कवि रीझिए तो कविताई न तु राधिका कन्हाई सुमरन को बहानो है। तुलसी ने भगवान का ऐश्वर्य रूप लिया, वह जीवन के बड़े काम आया, उसकी विभूति से जीवन संपन्न हो गया। सूर्य ने भगवान का रस रूप लिया, साहित्य सरस हो गया। तुलसी के मर्यादा पुरुषोत्तम के समक्ष समाज का सिर श्रद्धा से नत और मन विश्वास से आश्वस्त है। सूर्य के लीला पुरुषोत्तम के सम्मुख साहित्य की वाणी नर्तित और आत्मा तल्लीन है। हिंदी साहित्य की भूमिका वृंदावन और पंचवटी में है, अथवा शून्य महलिया और दसवें द्वार में इसे सहृदय ही सोचें। साहित्य की आत्मा मानस और सागर में तरंगायित है, अथवा बीजक और अखरावट से तरलायित इसे विज्ञ अभिज्ञ ही विचारें। भ्रमरगीत सार के इस संस्करण में छोटी भूल चूक सुधार दी गई है, चूर्णिका में परिभाजन कर दिया गया है तथा 8 पद जोड़कर संख्या पूरी 400 कर दी गई है। ये पद बड़े कोष्ठक से घेर दिए गए हैं। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ब्रह्मनाल, काशी, अनंत चतुर्दशी 2006।